हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 37। यथे धांसी समद्धोग्नेर भस्मसात कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तात्पर्य, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में वृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, उभे उहय वैश एते तरत्यमृतः साध्व साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। थोड़ी चर्चा करेंगे एधांसी का अर्थ क्या है। एधांसी का अर्थ होता है जलाना। एधांसी यहां पर बात बता रहे ईंधन को। तो समिद्धो मतलब जलती हुई ईंधन। तो अग्नि जो है जब ईंधन के संपर्क में आती है, या फिर ईंधन जब अग्नि के संपर्क में आता है, तो वो उसको भस्म कर देती है। यानी कह रहे हैं जिस प्रकार से अग्नि ईंधन के संपर्क में आने पे ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार से जब व्यक्ति दिव्य ज्ञान से युक्त हो जाता है, ये समझता है कि वो कृष्ण का अंश है और कृष्ण की सेवा में नियुक्त हो जाता है, तो सारे कर्मफल जो हैं वो भस्म हो जाते हैं। ये बात हमको समझ में आना चाहिए। और सारे कर्म का अर्थ है शुभ कर्म भी और अशुभ कर्म भी। अशुभ कर्मों की वजह से हम इस जगत में दुख भोगते हैं और शुभ कर्मों की वजह से हमको लाभ प्राप्त होता है, भौतिक लाभ प्राप्त होता है। लेकिन दोनों ही वस्तुतः हमको भौतिक जगत में बांध के रखे हैं और भौतिक जगत दुख का घर है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस पे दोनों प्रकार के ही दुखों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान यह बता रहे हैं किस प्रकार से व्यक्ति कर्म फलों से बाधित नहीं होता है। जैसे हमने पहले चर्चा करी थी, भगवान बता रहे थे 4 अध्याय के 19वें श्लोक में, यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणाम तमाहु पंडितं बुधः। तो वहां पे भी यह बात बताई गई थी किस प्रकार से ज्ञान की अग्नि से उसके जो कर्म हैं व्यक्ति के वो नष्ट हो जाते हैं। हमारे हृदय में जो कर्म हैं वो बीज रूप में होते हैं, कोई इच्छाएं होती हैं जगत को भोगने की, और उसका जब उसको व्यक्ति कार्य करता है तो फिर उसके फल प्राप्त होते हैं और संस्कार भी प्राप्त होता है, जिससे वो और इच्छाएं बलवती हो जाती हैं। तो यहाँ थोड़ा सा 2 पॉइंट को समझना चाहिए। एक है कि हम लोग जन्म मृत्यु के रूपी चक्र में फंसे हुए हैं और इस सागर में पड़े हुए हैं, और इस सागर से हमें निकलना चाहिए। तो इस सागर से निकलने का तरीका है दिव्य ज्ञान। इसके बारे में चर्चा की गई थी, ज्ञान प्लवे नेवा। यानी कि टेक्स्ट नंबर 36 में बताया गया है कि कैसे ज्ञान की नाव पर सवार होकर के व्यक्ति समुद्र को, अज्ञान के समुद्र को पार कर जाता है। और यहां बता रहे हैं किस प्रकार से अग्नि सारे ज्ञान की अग्नि जो है सारे कर्मों को नष्ट कर देती है। तो ज्ञान को ही एक बार अग्नि से और एक बार नाव से किसे उसकी उपमा दी गई है, उसका कारण क्या है। जब कोई व्यक्ति समुद्र के बाहर निकलता है तो भी समुद्र पीछे रहता है, लेकिन यहां जो उदाहरण ज्ञान को अग्नि से दिया जा रहा है वो बहुत प्रेरणादायक है कि जो ईंधन है हमारे कर्मरूपी ईंधन है वो ही समाप्त हो जाता है दिव्य ज्ञान की अग्नि के द्वारा। तो ये इस कारण से यहाँ पे ज्ञान का उपमा 2 शब्दों में दी जा रही है। और यहाँ पे एक और बात बोल रहे हैं, आपने देखा होगा बृहदारण्यक के उपनिषद से प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, तरत्य अमृतः साध्व असाधुनी। साधु कर्मों, अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों दोनों से व्यक्ति तर जाता है अगर वो अपने स्वरूप को समझ ले कि वो कृष्ण का दास है और अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करने का प्रयास वो करने लग जाए। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है जो प्रायः लोगों को समाज में समझ में नहीं आता है। पहली बात तो ये समझ में नहीं आती कि कृष्ण को हम अपने कर्म समर्पित कैसे करें, और इसीलिए एक प्रमाणिक वैष्णव गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें सिखाए। जैसे हम गुरु के माध्यम से सीखते हैं कि भगवान का विग्रह भगवान से भिन्न है, तो हम भगवान के विग्रह के माध्यम से भगवान को भोग लगा सकते हैं। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है तो अपनी वाणी के कर्मों को भगवान के नाम उच्चारण में, भगवान की कथा के उच्चारण में, अपने कानों को भगवान के कथा के श्रवण में, नाम श्रवण में, ऐसे करके विभिन्न प्रकार से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने की प्रशिक्षण हमको प्राप्त होता है वैष्णव गुरु के माध्यम से। और फिर ये ज्ञान भी हमारे हृदय में उदित होने लगता है कि हम कृष्ण के दास हैं, क्योंकि ये अज्ञान भी इसी कारण से उदित हुआ है क्योंकि हम कृष्ण की सेवा को भूल गए हैं, हमने चर्चा किया था पहले। और कृष्ण की सेवा के द्वारा वापस ये ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, स्वरूप सिद्ध की सिद्धि की अवस्था की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से व्यक्ति बुरे और अच्छे दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम जाने का योग्य बन जाता है। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है जो हमें भगवद्गीता के द्वारा मालूम चलता है। तो भगवान अब अगले श्लोक में इस ज्ञान के गुणगान के बारे में बोलेंगे 38वें श्लोक में, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात तथा शुद्ध नहीं है, ऐसा ज्ञान समस्त युग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह व्यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तात्पर्य, जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वे मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवद्गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। भगवान कृष्ण यहां बोल रहे हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम। सदृशम मतलब इस ज्ञान के समान कुछ भी नहीं है। किसके समान नहीं है? पवित्रम यह विद्यते, यानी कि इसके समान, इस दिव्य ज्ञान के समान ना तो कुछ कोई भी वस्तु शुद्ध करने वाली नहीं है। और तत् स्वयं योग संसिद्धम, मतलब जब कोई व्यक्ति इस योग में पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो क्या होता है? कालीनात्मनि विन्दति, यानी कि एक समय की परिधि पूरी होने के बाद व्यक्ति स्वयं अपने हृदय में ही आनंद की अनुभूति करता है। भगवान श्री कृष्ण इस बात को बोल रहे हैं। यहां पे दो उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण दिया गया था नाव का और दूसरा उदाहरण दिया गया था अग्नि का। तो ये सामान्य उदाहरण है। इन सिद्धांतों के इन उदाहरणों के बाद भगवान यहाँ पे सिद्धांत को समझा रहे हैं कि दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध करने वाला नहीं है। तो कौन से ज्ञान को भगवान ये बता रहे हैं? वो ज्ञान है आत्मा का, परमात्मा का, और आत्मा के परमात्मा से संबंध का। लेकिन वो ज्ञान है क्या, भगवान ने यहां नहीं बताया है। वो केवल ज्ञान के फल के बारे में यहां बता रहे हैं, और वो फल है मोह से पूरी तरह से मुक्ति। ये देख पाना कि सभी जीवात्माएं भगवान की हैं और भगवान में स्थित हैं। इस बारे में, इस ज्ञान के बारे में भगवान 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में और चर्चा करेंगे, जिसमें वो अपने परम सत्य के बारे में ज्ञान देते हैं। जो 9वां अध्याय है वो परम गुह्य ज्ञान है, जिसमें भगवान इस संबंध के बारे में और अधिक से अधिक बताएंगे। तो ये ज्ञान है क्या, इसके बारे में भगवान अभी नहीं बताया पूरा, लेकिन भगवान ज्ञान का गुणगान कर रहे हैं जो भक्ति के अभ्यास के द्वारा हमारे हृदय में उदित होता है प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन और आज्ञा के अनुसार। लेकिन ये वही बता रहे हैं कि इसके समान, इस ज्ञान के समान को शुद्ध करने वाला नहीं। भगवान इस चीज को नवे अध्याय में फिर से बोलेंगे, राज विद्या राज गुह्यम। ये जो ज्ञान है ये गुह्य है, सारे विद्याओं में सबसे गुह्य ज्ञान है। तो एक बात हमें और इसमें समझ में आनी चाहिए कि ये अपने आप में आनंद लेने का मतलब क्या है, क्योंकि आत्मा स्वरूप से ही आनंदमय है। तो आत्मा इस आनंद की अनुभूति तब करता है जब अपने संबंध को भगवान कृष्ण से महसूस करता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण शब्द है कालेना। कालेना का अर्थ है समय की परिधि के समाप्त होने के बाद ही। जैसे हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं और जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं उतना हम अपने आध्यात्मिक स्वरूप से और अधिक अधिक परिचित होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे हमारी भक्ति भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अधिक से अधिक होती है उतना ही अधिक हम सुख का अनुभव करने लगते हैं। तो भगवान प्रभुपाद जहां बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाता है तो उसको शांति बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, अपितु शांति उसके हृदय में ही है। वास्तवतः हम अपने मन को देखेंगे तो हमारा हम देखते हैं कि हमारा मन बहुत आंदोलित रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन आंतरिक होने का मतलब ये नहीं है कि हम मानसिक धरातल पर रहें। आंतरिक होने का अर्थात होता है, मतलब होता है कि हम आध्यात्मिक धरातल पर रहें। तो हम अपने मन को जब शांत करते हैं तो स्थिति कैसे होती है, जैसे एक तालाब में होता है। जब तालाब में बहुत हलचल होती है तो हमें उसका जो तल है वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब तालाब शांत हो जाता है तो फिर हम देख पाते हैं तल को और अन्य वस्तुओं को। तो उसी प्रकार से इस समय हमारा मन बहुत ही पूरे पुराने भौतिक संस्कारों की वजह से बहुत ही दूषित है, बहुत ही आंदोलित रहता है, बहुत चंचल रहता है। और इस कारण से हम एक ऐसे व्यक्ति की तरह हैं जो उस तालाब के बाहर देख रहा है। तो जो व्यक्ति पूरी तरह देहात्म बुद्धि में होता है, शारीरिक से शारीरिक चेतना में रहता है, वो अपने स्वरूप को नहीं समझ पाता। हमारा जो स्वरूप आप मान सकते हैं वो है, वो तालाब के तल की तरह है। तो तालाब जो है वो हमारा, तालाब का पानी या तालाब जो है वो हमारे मन की तरह है, हमारी चेतना की तरह है। तो जो चेतना दूषित रहती है तो व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं समझ पाता। लेकिन यहाँ पे शब्द यूज हो रहा है तत् स्वयं योग समसिद्ध। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते रहने से हमारा मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। और जब मन शांत होने लगता है तो व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और हमारे आत्मा का स्वरूप ही होता है, चिन्मय स्वरूप, आनंद स्वरूप। और ये चीज समय के संग होती है। जैसे तालाब का जल तुरंत ठंडा, तुरंत चंचलता को से रहित नहीं होता, लेकिन अगर चंचल होने के कारण जिसकी वजह से तालाब का जल आंदोलित हो रहा है, वो अगर उस कारण को बंद कर दिया गया तो धीरे धीरे करके तालाब का जल स्थिर हो जाता है। ऐसे ही अपनी चेतना को दूषित करने के कारणों को अगर हम बंद कर दें, हमने पहले भी चर्चा किया था कि इंद्रिय भोग के विषयों को इंद्रियों से देना बंद कर दें, तो धीरे धीरे हमारा मन शांत हो जाता है और फिर आत्मा के आनंद की अनुभूति हम कर पाएंगे। कालेना शब्द का बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। यहाँ पे भगवान कालेना शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हम कृत्रिम रूप से अपनी प्रगति को तेज कर सकते हैं। जैसे कोई कोई फूल होता है तो पहले वो कली के रूप में होता है, फिर थोड़ा और बढ़ता है, फिर थोड़ा और बढ़ता है और फिर पूरा एक फूल के रूप में हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पेड़ में अधिक जल दूंगा तो जो फूल है वो बहुत जल्दी बढ़ने लग जाएगा। उसी प्रकार से ऐसा नहीं है, मान लीजिए मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं शुद्ध भक्त बनूं, तो ऐसा नहीं है कि आज मैं 64 माला करना शुरू किया और मैं कल 64 माला के बाद, 64 माला जब मैं खत्म कर रहा हूं तब तक मैं शुद्ध भक्त बन जाए, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, हर महामंत्र के साथ हम शुद्ध होते चले जा रहे हैं। हर महामंत्र क्या, हर नाम के संग हम शुद्ध होते जा रहे हैं। जो भी हम सेवा भगवान के लिए कर रहे हैं उससे हम शुद्ध होते जा रहे हैं। लेकिन हमको धैर्य भी रखना पड़ेगा, और ये धैर्य रखना आजकल के समाज में मुश्किल बहुत है, क्योंकि जगत में आजकल सब कुछ हर व्यक्ति को तुरंत चाहिए, खाना तुरंत चाहिए, चाय तुरंत चाहिए, अब कुछ भी। गर्मी लग रही है तो ठीक है, एसी चला दो तुरंत ठंडा हो जाएगा, ठंडा लग रहा है हीटर चला दो तुरंत गर्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम सोचते हैं कि हमें आध्यात्मिकता में भी तुरंत प्रगति चाहिए, कोई बटन दबाया और हमारी चेतना परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारी चेतना धीरे धीरे शुद्ध होती है, और इसके लिए आवश्यक है कि हम नियमित रूप से योग पद्धति का अभ्यास करें। भक्ति में हमने पहले भी चर्चा किया था कि हम आंतरिक यात्रा में हैं, और वो यात्रा क्या है, श्रद्धा से प्रेम की यात्रा। और इसमें पड़ाव क्या है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। और हम प्राय सभी लोग अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे हैं, और अनर्थ निवृत्ति में बहुत अधिक एक दिन करा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम नियमित रूप से भक्ति की क्रियाओं को करें, तो उससे हमारे अनर्थों की निवृत्ति बहुत होती है, क्योंकि इससे सतोगुण बढ़ता है। तो ये आवश्यक है एक साधक के लिए, स्पेशली जो अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे है, अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है, कि वो नियमित रूप से भक्ति क्रियाओं को करे, चाहे अच्छी लगे चाहे अच्छी ना लगे। बहुत बार भक्त भक्तों के हृदय में निराशा होती है, इतने साल से मैं भक्ति कर रहा हूँ और मैं इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को दूर नहीं कर पाया हूँ, वो अभी भी हैं, मुझे क्या करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो हृदय में हैं और उनको मैं चाहता नहीं हूँ, बहुत सी इच्छाओं को मैं दूर भी नहीं करना चाहता। तो हमें समझ में आना चाहिए कि जो इच्छाएं चार नियमों को भंग करने के लिए हैं उनको तो हमें बिल्कुल दूर त्याग देना चाहिए, लेकिन बहुत सारी इच्छाएं हैं जिससे हमारी भक्ति में कोई बहुत बड़ा बाधा नहीं आती है, या फिर चार नियमों को तोड़ने में कोई ऐसा नहीं होता प्रॉब्लम, तो उसके लिए हमें बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने बहुत अधिक प्रसाद ग्रहण कर लिया, तो इसके लिए व्यक्ति को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, या फिर हर छोटी छोटी चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैं ये बहुत अधिक कर रहा हूँ, मैं वो बहुत अधिक कर रहा हूँ, मेरी ये बहुत एक आसक्ति बहुत, ये नहीं, इस पर ज्यादा बहुत हमको चिंता नहीं करने की जरूरत है। हमको विश्वास होना चाहिए कि जैसे जैसे हम प्रगति करते चले जाएंगे तो हमको कोई बहुत, हम लोग अब अपने हृदय में ही संतुष्टि का अनुभव करेंगे, हमें कोई बहुत बड़े आडंबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने हृदय की संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये स्वतः होगा, अपने समय में होगा। हमें प्रयास ये करना है कि हम अधिक से अधिक भगवान कृष्ण को स्मरण करें, और जितना अधिक भगवान कृष्ण को स्मरण करेंगे हम भगवान कृष्ण से जुड़े रहने का संबंध का अनुभव करेंगे और एक उच्चतर सुख संतुष्टि का अनुभव करेंगे। लेकिन ये सब समय के संग होगा। आप देखेंगे कि जिन चीजों को आप भक्ति में आने से पहले आप व्यथित हो जाते थे, वो वस्तुएं अब आपको उतना परेशान नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि अपना संबंध हम अधिक रूप से भगवान से महसूस कर पाते हैं, आंतरिक रूप से हम और स्थिर होते चले जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो बढ़ती चली जाती है भक्ति के अभ्यास से। और इस संबंध में हमें अपने सुख के बारे में भी ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। हमको अपनी अक्षमताओं के बारे में सोचने के बजाय कृष्ण के बारे में सोचने का प्रयास अधिक करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी अक्षमताओं के बारे में ना सोचें और हमको ताकि वो हमें गिरा दें, लेकिन उसी के बारे में सोचते रहना सही नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो अपनी बीमारी के ही बारे में सोचता रहेगा तो सही कैसे होगा? उसका फोकस, उसका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि वो दवा ठीक से ले और काल में समय आने पे उसकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। श्रील भक्ति सिद्धांत से सरस्वती ठाकुर इस संबंध में कहते थे कि हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत में हम लोग गेट तोड़ करके नहीं घुस सकते हैं। गेट तोड़ के घुसने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के घर पे गेट खटखटाता है कि मुझे अंदर आना है और दरवाजा नहीं खुला, तो बस वो कोई ट्रक लेके आएगा और दरवाजा धम्म करके तोड़ देगा और घुस जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आध्यात्मिक जगत में हम लोग अपने हम जबरदस्ती नहीं घुस सकते। क्या अर्थ है इसका? अर्थ ये है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सोच के बैठे कि बस जब कृष्ण मेरे को चाहेंगे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। अभी तो मैं सोने की इच्छा करता हूँ, अब कहाँ मंदिर जाऊँ, मेरे मंदिर जाने की मन नहीं कर रहा, मेरे को व्रत पालन करने का मन नहीं कर रहा, मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो जब भगवान चाहेंगे तभी मैं शुद्ध हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होए। ये सब कुछ समय काल का समय आने पे होगा, लेकिन हमें अपना कर्तव्य करते रहना है, नियमित रूप से बड़े ध्यान पूर्वक अपनी भक्ति को करते रहना है, भले ही हमारे हृदय में इस समय कोई भी इच्छा होती रहे। और ये विश्वास होना चाहिए कि अगर हम नियमित रूप से भक्ति करते रहेंगे, जो कि बहुत आवश्यक है, तो हम एक दिन शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन इस नियमित भक्ति के अभ्यास में आप लोग भी अनुभव करेंगे, कभी कभी हमें बहुत सुख की अनुभूति होती है और कभी हमको सुख की अनुभूति नहीं होती, कभी कभी हमारा मन शुद्ध होता है, कभी कभी हमारा मन शुद्ध नहीं होता। इन सब चीज़ों में हमें फंसने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए कि ये जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है ये निश्चित रूप से समय आने पर फलित होती है। तो इसलिए हमें इस समय भक्ति के अभ्यास में अपने को स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए और भगवान की कृपा से धीरे धीरे हमें उच्चतर रस भी प्राप्त आने लगेगा। और जब उच्चतर रस आने प्राप्त होने लगेगा तो इस जगत की छोटी छोटी समस्याएं हमारे लिए कोई खास महत्वपूर्ण नहीं रखेंगी। और प्रायः एक्चुअली देखा जाए तो प्रॉब्लम्स हमारे लिए प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, वो कष्ट हमारे लिए परेशानियां, हमारे लिए परेशानियां रहेंगी नहीं। जैसे दुनिया हमारे बारे में क्या बोलती है, ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। हमारे कृष्णा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, दुनिया कुछ भी सोचते रहे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुरुआत में हो सकता है हमको ऐसी प्रॉब्लम रहती हो कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, लेकिन भक्ति करते करते कृष्ण भावना में कृष्ण के ऊपर अपनी श्रद्धा को बढ़ाते बढ़ाते व्यक्ति इन सब परेशानियों से ऊपर उठ जाता है और अंततो गत्वा कालीनात्म निबिंदति, भक्ति के द्वारा शुद्ध हो जाता है और अपने ही हृदय में भगवान से अपने संबंध का अनुभव करता है और इस संबंध के द्वारा दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। लेकिन ये सब श्रद्धा के द्वारा प्राप्त होता है, तो कौन व्यक्ति श्रद्धा प्राप्त के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त करेगा और जिसके पास श्रद्धा नहीं होती वो इस ज्ञान को क्यों नहीं प्राप्त कर पाएगा, इसके बारे में भगवान अगले श्लोकों में चर्चा करेंगे, तो उसको हम चर्चा आगे करेंगे। हरे कृष्ण।